नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए फास्फेट और पोटेशियम युक्त उर्वरकों पर सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर लगभग 41,534 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 5 बड़े फैसले लिए हैं।
खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जिसमें 41,000 करोड़ रुपए का ये कंप्लीट सब्सिडी का प्रोग्राम है। सेकंड, राजस्थान में जो पचपदरा बालोतरा जिले में रिफाइनरी बन रही है, उससे रिलेटेड कुछ फैसले हुए हैं जो 79,000 करोड़ रुपीज से रिलेटेड है सारा। तीसरा, जयपुर में मेट्रो का फेज 2, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। चौथे और पांचवे दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं।
सरकार ने आज कहा कि देशभर की खदानों और बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव कुमार कस्सी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर कोयले की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और कोयले का पर्याप्त भंडार बनाए रखा गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
घरेलू एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 95% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और लगभग 91% रिफिल की डिलीवरी डीएसी कोड के साथ हो रही है, और ये 91% जो फिगर है वो ये इंश्योर करता है कि डाइवर्जन न हो।
इसी बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर मंत्रियों के समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के मद्देनजर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार एलपीजी, पेट्रोल और डीजल, किसानों के लिए उर्वरक की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है और देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुगम बना रही है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद आज घरेलू शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी देखी गई और प्रमुख सूचकांक लगभग 4% बढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 2,946 अंक की बढ़त के साथ 77,563 पर बंद हुआ। निफ्टी 874 अंक बढ़कर 23,997 दर्ज हुआ। इसी बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। दिन के कारोबार में वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट कच्चे तेल की कीमत गिरकर $91.11 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $91.72 प्रति बैरल तक पहुंच गई। केरलम, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक ही चरण में मतदान होगा। मतगणना 4 मई को होगी। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए कल तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में भय और अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। गोवा में बंबई उच्च न्यायालय की पीठ ने पोंडा विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना रद्द कर दी है। इससे 9 अप्रैल को होने वाला मतदान रद्द हो गया है। यह फैसला प्रीतम हरमलकर और अंकिता कामत की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु ने मलेशिया की वोंग लिंग चिंग को, एचएस प्रणॉय ने गुएन हाई डांग को और आयुष शेट्टी ने चीन की ली शिंग फेंग को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।